देश के कोने कोने से आए हुए सारे युवा साथियों और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश भर में जुड़े हुए सभी नौजवान, मुझे बताया गया कि यहाँ भी जगह कम पड़ी है तो किसी और कमरे में भी शायद काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग बैठे हैं, उनका भी मैं आदरपूर्वक यह स्मरण करता हूँ। आज 11 सितंबर है, विश्व को 2001 से पहले ये पता ही नहीं था कि 9/11 का महात्म्य क्या है। दोष दुनिया का नहीं था, दोष हमारा था कि हमने ही उसे भुला दिया था। और अगर हम न भुला देते तो शायद 21वीं शताब्दी का भयानक 9/11 न होता। सवा सौ साल पहले एक 9/11 था जिस दिन इस देश के एक नौजवान ने, कल्पना कीजिए करीब करीब आप ही की उम्र का, 5 साल साथ आगे हो सकता है, करीब करीब आप ही की उम्र का, गेरुए वस्त्रधारी, दुनिया जिस कपड़ों से भी परिचित नहीं थी, विश्व जिसे गुलाम भारत का प्रतिनिधि के रूप में देख रहा था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास में वो ताकत थी कि गुलामी की छाया उसके न चिंतन में थी, न व्यवहार में थी, न उसकी वाणी में थी। वो कौन सी विरासत को उसने अपने अंदर संजोया होगा कि गुलामी के 1000 साल के बावजूद भी उसके भीतर वो ज्वाला धधक रही थी, वो विश्वास उमड़ रहा था और विश्व को देने का सामर्थ्य इस धरती में है, यहां के चिंतन में है, यहां की जीवन शैली में है। यह असामान्य घटना है। हम खुद सोचें कि हमारे चारों तरफ जब नेगेटिव चलता हो, हमारी सोच के विपरीत चलता हो, चारों तरफ आवाज उठी हो और फिर हमें अपनी बात बोलना हो तो कितना डर लगता है। चार बार सोचते पता नहीं कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल देगा, ऐसा दबाव पैदा होता है। इस महापुरुष की वो कौन सी ताकत थी, किस दबाव ने कभी उसने अनुभव नहीं किया, भीतर की ज्वाला, भीतर का उमंग, भीतर का आत्मविश्वास, इस धरती की ताकत का कोई भली भांति जानने वाला इंसान विश्व को सामर्थ्य देने, सही दिशा देने, समस्याओं का समाधान रास्ता दिखाने का सफल प्रयास करता है। विश्व को पता तक नहीं था कि लेडीज एंड जेंटलमैन के सिवाय भी दुनिया में कोई बात हो सकती है। और जिस समय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये दो शब्द निकले, मिनटों तक तालियों की गुंज बज रही थी, उस दो शब्दों में भारत की वो ताकत का उसने परिचय करवा दिया था। वो एक 9/11 था जिस व्यक्ति ने अपनी तपस्या से मां भारती की पदयात्रा करने के बाद जिसने मां भारती को अपने में संजोया था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर भाषा को, हर बोली को जिसने आत्मसात किया था, एक प्रकार से भारत मां की जादू तपस्या को जिसने अपने भीतर पाया था, ऐसा एक महापुरुष पल दो पल में पूरे विश्व को अपना बना लेता है, पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित कर लेता है। हजारों साल की विकसित हुई भिन्न भिन्न मानव संस्कृति को वो अपने में समेट करके विश्व को अपनत्व की पहचान देता है, विश्व को जीत लेता है। वो 9/11 था, विश्व विजयी दिवस था मेरे लिए, विश्व विजयी दिवस था। और 21वीं सदी के प्रारंभ का वो 9/11 जिसमें मानव जात को विनाश का मार्ग, संहार का मार्ग, उसी अमेरिका की धरती पर एक 9/11 को प्रेम और अपनत्व का संदेश दिया जाता है, उसी अमेरिका की धरती पर उस संदेश को भुला देने का परिणाम था कि मानव के संहार का रास्ते की एक विकृत रूप विश्व को हिला दिया था। उसी 9/11 को हमला हुआ और तब जाकर तो दुनिया को समझ आया कि भारत से निकली हुई आवाज 9/11 को किस रूप में इतिहास में जगा देती है। और विनाश और विकृति के मार्ग पर चल पड़ा 9/11 विश्व के इतिहास में किस प्रकार से अंकुरित हो जाता है। और इसलिए आज हम जब 9/11 के दिन मिले हैं तब विवेकानंद जी को अलग रूप से समझने की आवश्यकता मुझे लगती है। विवेकानंद जी के दो रूप अगर आप बारीकी से देखोगे तो ध्यान में आएगा। विश्व में जहां गए वहां, जहां भी बात करने का मौका मिला वहां बड़े विश्वास के साथ, बड़े गौरव के साथ भारत का महिमा मंडन, भारत की महान परंपराओं का महिमा मंडन, भारत के महान चिंतन का महिमा मंडन उसको व्यक्त करने में वो कभी थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, कभी उलझन नहीं अनुभव करते थे। वो एक रूप था विवेकानंद का। और दूसरा रूप वो था जब भारत के भीतर बात करते थे तो हमारी बुराइयों को खुलेआम कोसते थे, हमारे भीतर की दुर्बलताओं पर कठोराघात करते थे। और वो जो भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा का प्रयोग तो आज भी अगर हम करें तो शायद लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसी कैसे बोल रहे हैं। वे समाज के हर बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते थे। और उस समय के समाज की कल्पना कीजिए जब रिचुअल का महत्व ज्यादा था, पूजा पाठ परंपरा ये सहज समाज जीवन की प्रकृति प्रवृत्ति थी। ऐसे समय 30 साल का एक नौजवान ऐसे माहौल में खड़ा होकर के कह दे कि पूजा पाठ, पूजा अर्चन, मंदिर में बैठे रहने से कोई भगवान भगवान मिलने वाला नहीं है, जनसेवा यही प्रभु सेवा, जाओ जनता जनार्दन गरीबों की सेवा करो तब जाकर के प्रभु प्राप्त होगा, कितनी बड़ी ताकत है। किसान विश्व के अंदर जाकर के भारत का गुणगान करता था, लेकिन भारत में आता था तो भारत के अंदर की जो बुराइयां थी उस बुराइयों पर कठोर प्रहार करता था। वे संत परंपरा से थे, लेकिन जीवन में कभी वो गुरु खोजने नहीं निकले थे। ये सीखने और समझने का विषय है। वे गुरु खोजने के लिए नहीं निकले थे, वे सत्य की तलाश में थे। महात्मा गांधी भी जीवन भर सत्य की तलाश से जुड़े रहे थे, वे सत्य की तलाश में थे। परिवार में आर्थिक स्थिति कठिन थी, रामकृष्ण देव मां काली के पास भेजते हैं, जा तुझे जो चाहिए मां काली से मांग, और बाद में पूछा कुछ मांगा बोले नहीं मांगा। वो कौन सा मिजाज होगा जो काली के सामने खड़े होकर के भी मांगने के लिए तैयार नहीं है? भीतर वो कौन सा लोह तत्व होगा, वो कौन सी ऊर्जा होगी जिसमें यह सामर्थ्य पैदा हुआ? इसलिए वर्तमान समाज में जो बुराइयां हैं, क्या हमारे समाज की बुराइयों के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे? हम स्वीकार कर लेंगे? अमेरिका की धरती पर विवेकानंद जी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहें, हम खुद नाच उठें, लेकिन मेरे देश में ही मैं नौजवानों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्या हम नारी का सम्मान करते हैं क्या? हम लड़कियों के प्रति आदर भाव से देखते हैं क्या? जो देखते हैं उनको मैं 100 बार नमन करता हूं। लेकिन जो उसके भीतर इंसान नहीं देख पाते हैं, मानव नहीं देख पाते हैं, वे भी ईश्वर की एक कृति है, अपनी बराबरी से है, ये भाव अगर नहीं देखते हैं तो फिर स्वामी विवेकानंद के वो शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हमें तालियां बजाने का हक है कि नहीं है? 50 बार हमें सोचना है। हम कभी सोचें, विवेकानंद जी कहते थे जनसेवा प्रभु सेवा। अब देखिए, एक इंसान 30 साल की उम्र में पूरे विश्व में ऐसा जय जयकार करके आया हो, उस गुलामी के कालखंड में दो व्यक्तित्व जिसने भारत में एक नई चेतना नई ऊर्जा प्रकट की थी, दो घटनाओं ने, एक जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला और जब स्वामी विवेकानंद जी का 9/11 के भाषण की देश और दुनिया में चर्चा होने लगी, भारत गुलामी के कालखंड में एक नई चेतना का एक भाव पूरे भारत में इन दो घटनाओं ने जगाया था, और दोनों बंगाल के संतान। कितना गर्व होता है जब मैं दुनिया में किसी को जाके कहता हूं कि मेरे देश के रविंद्रनाथ टैगोर, श्रीलंका का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, भारत का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया। क्या हम हमारी इस विरासत के प्रति गर्व करते हैं क्या? और खोखला नहीं, आज हिंदुस्तान में, दुनिया में हम एक युवा देश हैं, 800 मिलियन लोग इस देश में उस उम्र के हैं जो विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण किया उससे भी कम उम्र के हैं। इस देश की 65% जनसंख्या विश्व में डंका बजाने वाले विवेकानंद जी की उम्र के कम उम्र की 65% जनसंख्या जिस देश की हो उस देश में विवेकानंद से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। और इसलिए विवेकानंद जी ने काम कैसा किया, वो सिर्फ उपदेश देने वाले नहीं रहे, उन्होंने आइडियाज को आइडियलिज्म में कन्वर्ट किया और आइडियलिज्म और आइडियाज का कॉम्बिनेशन करके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया। आज से करीब 120 साल पहले इस महापुरुष ने रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया, विवेकानंद मिशन को जन्म नहीं दिया, रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया। बात छोटी होती है लेकिन अकलमंद को इशारा काफी होता है। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का जिस भाव से जन्म हुआ आज 120 साल के बाद भी न डाइल्यूजन आया है न डाइवर्जन आया है, एक ऐसी संस्था को कैसी मजबूत नींव बनाई होगी उन्होंने, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा, विजन कितना क्लियर होगा, एक्शन प्लान कितना साफ होगा, भारत के विषय में हर चीज की कितनी गहराई से अनुभूति होगी, तब जाकर के एक संस्था 120 साल के बाद भी वो आंदोलन आज भी उसी भाव से चल रहा है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भी उस महान परंपरा में कुछ पल आचमन लेने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। जब विवेकानंद जी के 9/11 के भाषण की शताब्दी थी तो मुझे उस दिन शिकागो में जाने का सौभाग्य मिला था, उस सभागृह में जाने का सौभाग्य मिला था और उस शताब्दी समारोह के अवसर पर मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि कैसा वो भाव विश्व था, कैसी वो भाव पल था। और आज 125 वर्ष मनाए जाते हैं, क्या कभी दुनिया में किसी ने सोचा है कि किसी लेक्चर के 125 वर्ष मनाए जाए। कुछ पल की वो वाणी, कुछ पल के वो शब्द 125 साल के बाद भी जिंदा हो, जागृत हो और जागृति पैदा करने का सामर्थ्य रखते हो, ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक महान विरासत के रूप में बनाने का अवसर है। मैं यहां आया इतनी पूरी ताकत से वंदे मातरम सुन रहा था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सहज रूप से जग जाता है, लेकिन मैं सभागृह को नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान को पूछ रहा हूं, क्या हमें वंदे मातरम कहने का हक है क्या? जाएगी, मैं जानता हूं। सोच लीजिए, क्या हमें वंदे मातरम कहने का हक है क्या? हम वो लोग पान खाकर के उस भारत मां पर पिचकारी मारे और फिर वंदे मातरम बोले? सारा कूड़ा कचरा भारत मां पर फेंके और फिर वंदे मातरम बोले? वंदे मातरम बोलने का इस देश में सबसे पहला किसी को हक है, तो देश भर में सफाई का काम करने वाले भारत मां के उन सच्चे संतानों को हैं जो सफाई करते हैं। और इसलिए हमें जरूर सोचें कि ये हमारी भारत माता सुजलाम सुफलाम भारत माता हम सफाई करें या न करें, गंदा करने का हक हमें नहीं है। गंगा के प्रति श्रद्धा हो, गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हो। हर नौजवान के मन में रहता है कि मेरे मां बाप को एक बार गंगा स्नान कराऊं, लेकिन क्या उस गंगा को गंदा करने से हम अपने आप को रोक पाते हैं क्या? क्या आज विवेकानंद जी होते तो हमें इस बातों पर डांटते कि नहीं डांटते, हमें कुछ कहते कि नहीं कहते? और इसलिए कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम स्वस्थ इसलिए हैं कि बढ़िया बढ़िया अस्पताल है, हम स्वस्थ इसलिए हैं कि बहुत उत्तम स्तर के डॉक्टर हैं। जी नहीं, अस्पतालों की भरमार के कारण हम स्वस्थ नहीं है, उत्तम से उत्तम पढ़े लिखे डॉक्टरों के कारण हम स्वस्थ नहीं है। हम स्वस्थ इसलिए हैं कि कोई मेरा सफाई कामदार सफाई डॉक्टर से भी ज्यादा आदर उसके प्रति रहे, तब जाकर वंदे मातरम कहने का आनंद आता है। और इसलिए मुझे बराबर याद है, एक बार मैंने बोल दिया पहले शौचालय फिर देवालय। बहुत लोगों ने मेरे बाल पोंछ लिए थे, लेकिन आज मुझे खुशी है देश में ऐसी बेटियां हैं जो शौचालय नहीं तो शादी नहीं करेंगे ऐसा व्रत लिया। हम लोग हजारों साल से टिके हैं, उसका कारण क्या है? हम समयानुकूल परिवर्तन के पक्षकार लोग हैं। हम हमारे भीतर से ऐसे लोगों को जन्म देते हैं जो हमारी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नेतृत्व देते हैं, और वही हमारी ताकत है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का हम स्मरण करते हैं, तब वो 9/11 शब्दों का भंडार नहीं था, वो एक तपस्वी की वाणी थी, एक तपहत वाणी थी, तब जाकर के निकलता था, जब दुनिया को अभिभूत कर देता था। वरना हिंदुस्तान यानी सांप सपेरों का देश, जादू टोना वालों का देश, एकादशी को क्या खाना और पूर्णिमा को क्या नहीं खाना, यही देश, यही हमारी पहचान थी। विवेकानंद दुनिया के सामने कह दिया था, हमारी परंपरा कोई किचन की परंपरा नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना ये मेरे देश का सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, वो तो हमारी व्यवस्थाओं का हिस्सा होगा, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था अलग है, आत्मवत् सर्वरूप भूतेषु, ये हमारी सोच है। अहम ब्रह्मास्मि, ये ऐसे निकली हुई बातें नहीं है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, और वो आर्य शब्द हम पूरे विश्व को सुसंस्कृत करेंगे इस अर्थ में है, किसी जाति परिवर्तन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है। और इसलिए जिस महान विरासत के हम, उस परंपरा से पले बड़े लोग हैं, ये सब इस धरती की पैदावार है, सदियों की तपस्या से निकली हुई चीजें, इस देश के हर व्यक्ति ने इसके अंदर कुछ न कुछ जोड़ा है, यही तो देश है। एक भीख मांगने वाला भी तत्व ज्ञान से भरा हुआ होता है, जब कोई आता है तो कहता है देने वाले का भी भला न देने वाले का भी भला। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की सफलता का मूल आधार यह था, उनके भीतर आत्मसम्मान और आत्मगौरव का भाव था, और आत्म मतलब नॉट अ पर्सन, जिस देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उसकी इस महान विरासत को आत्मगौरव आत्मसम्मान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या हम कभी सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, किसी अच्छी जगह पर हम चले जाएं, बढ़िया प्राकृतिक वातावरण हो, साफ सुथरा हो, बहुत अच्छा लगता हो, तो पहला शब्द क्या निकलता है मन से, यह लगता नहीं है हिंदुस्तान है। कहते कि नहीं कहते, ऐसा बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर भीतर आत्मसम्मान आत्मगौरव से पले बड़े होते तो ये भाव नहीं आता, गर्व होता, चलिए भाई कुछ भी हो लेकिन मेरे देश में भी है, ऐसा है। विवेकानंद जी, मैं सच बताता हूं दोस्तों, आज के संदर्भ में विवेकानंद जी को देखें, कुछ लोगों को लगता होगा जब मैं कहता हूं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ये उसका विरोध करने वाले भी लोग हैं, कुछ कहते नहीं मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया चाहिए, ऐसा भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग तो जानबाज भांति भांति की चीजें निकालते हैं। लेकिन जिसको मालूम होगा कि विवेकानंद जी और जमशेद जी टाटा के बीच जो संवाद हुआ, अगर वो संवाद मालूम होगा, विवेकानंद जी और जमशेद जी टाटा के बीच का जो पत्र व्यवहार है वो किसी को देखा होगा तो पता चलेगा कि उस समय गुलाम हिंदुस्तान था, तब भी विवेकानंद 30 साल का नौजवान जमशेद जी टाटा जैसे विदेशी व्यक्ति को कह रहा है कि भारत में उद्योग लगाओ ना, मेक इन इंडिया बनाओ ना। और स्वयं जमशेद जी टाटा ने लिखा है, स्वयं ने कहा है कि विवेकानंद जी के वो शब्द वो बातें मेरे लिए प्रेरणा रही, उसी के कारण मैं इस भारत के अंदर भारत के उद्योगों को बनाने के लिए मैं खप गया। आप हैरान होंगे जी, हमारे देश में फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन विवेकानंद जी के विचारों में निकलता है कि भारत में कृषि क्रांति कैसे करनी चाहिए। और डॉक्टर सेन जो पहले एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के मुखिया माने जाते हैं, उन्होंने जो इंस्टीट्यूट बनाई थी उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी विवेकानंद एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से रखा था। यानी हिंदुस्तान में कृषि को आधुनिक बनाना चाहिए, वैज्ञानिक रिसर्च से बनाना चाहिए, इस सोच की बातें विवेकानंद जी उस उम्र में करते थे। आज जिसको लेकर के चर्चा है कि हमारा नौजवान यूनिवर्सिटी जाता है, ये करता है, आज 9/11 को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी समारोह से भी जोड़ा है, और आज 9/11 जिस महापुरुष ने महात्मा गांधी को जी करके दिखाया, ऐसे आचार्य विनोबा भावे की भी जन्म जयंती है। और आज जब मैं इस बात करता हूं तब दीनदयाल जी के विचारों को जिन्होंने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, यही भावों का आधुनिक संदर्भ में प्रगटीकरण है। अंत्योदय, जनसेवा ही प्रभु सेवा ही विवेकानंद जी कहते थे। आचार्य विनोबा जी के बड़े निकट के साथी दादा धर्माधिकारी गांधी जी जो सोचते थे, कहते थे, उसको व्याख्यायित करने का काम जीवन के द्वारा विनोबा जी ने किया, और विनोबा जी जो सोचते थे, बोलते थे, उसको शब्दों में ढालने का काम दादा धर्माधिकारी के चिंतन में दिखता है। दादा धर्माधिकारी जी ने एक किताब में लिखा है, बड़ा मजेदार लिखा है। कोई नौजवान उनके पास आया नौकरी के लिए, कोई परिचित के द्वारा आया था, वो चाहता था कि धर्माधिकारी जी कुछ सिफारिश करें, कोई मदद करें तो कहीं काम मिल जाए। तो दादा धर्माधिकारी जी ने लिखा है कि उसको मैंने पूछा कि तुम्हें क्या आता है, तो उसने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूं। उन्होंने दोबारा पूछा कि तुम्हें क्या आता है, तो उसने दोबारा कहा मैं ग्रेजुएट हूं। वो समझ नहीं पाया दादा धर्माधिकारी जी क्या पूछ रहे हैं। तीसरी बार पूछा कि भाई तुम्हें क्या आता है, नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूं। तो धर्माधिकारी जी पूछा तुम्हें ड्राइविंग करना आता है क्या, तो बोले नहीं। खाना पकाना आता है, बोले नहीं। फर्नीचर बनाना आता है, बोले नहीं। चाय नाश्ता बनाना, नहीं मुझे नहीं, मैं तो ग्रेजुएट हूं। अब देखिए विवेकानंद जी ने क्या कहा था। विवेकानंद जी की हर बात हमारे हमारे दिमाग को एक प्रकार से बड़ा हिला देने वाली उनकी नेचर थी, और वो उसी भाषा में बात करते थे। और उन्होंने बड़ा मजेदार कहा, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी पुट इनटू योर ब्रेन एंड रन्स राइट देयर अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। ऐसा ज्ञान का खजाना भर देते हैं कि अनडाइजेस्टेड रहता है। इफ यू हैव एसिमिलेटेड 5 आइडियाज एंड मेड देम योर लाइफ एंड कैरेक्टर, यू हैव मोर एजुकेशन देन एनी मैन हु हैज गॉट बाय हार्ट अ होल लाइब्रेरी। यानी पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है दिल दिमाग में, लेकिन 5 उसूलों को लेकर के जीता है तो शायद ज्यादा। कहने का मतलब है उन्होंने नॉलेज एंड स्किल को अलग किया। आज पूरा विश्व हाथ में सर्टिफिकेट है उसका महात्मा है, कि हाथ में हुनर है उसका महात्मा है। इस सरकार ने उसी विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट विषय नया नहीं है, लेकिन पहले डिपार्टमेंटों में बिखरा पड़ा था, कोई उसका मालिक नहीं था, जिसको मर्जी पड़े उस दिशा में चलता था। हमने आकर के इन सारे स्किल डेवलपमेंट को एक जगह पर लाया, उसका अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग डिपार्टमेंट बनाया और फोकस वे में स्किल डेवलपमेंट, जो कि देश में ऐसे नौजवानों को तैयार करें जिसको कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। मेरे देश का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। मेरा देश का नौजवान मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहिए। और इसलिए मैं आज जब स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को याद कर रहा हूं, तब वो इनोवेशन के पक्षकार थे, अनुसंधान के पक्षकार थे, वो घिसी पीटी टूटी फूटी चीजों का बहिष्कार करने के लिए आह्वान करते थे। कितनी महान क्यों ना हो, कितनी अच्छी क्यों ना लगती हो, लेकिन अगर कांड बाह्य है तो छोड़ने के लिए वो आह्वान करते थे। समाज जीवन भी तभी प्रगति कर सकता है कि जब नित्य नूतन हो, नित्य नूतन प्राणवान हो, तभी जाकर के होता है। और इसलिए हमारे देश की युवा पीढ़ी, उसमें वो साहस चाहिए, वो जज्बा चाहिए जिसमें इनोवेशन का इरादा रहे। कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार करूं लेकिन फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्त। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों, जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में नदी में समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे, ऐसे नौजवानों की अपेक्षा। आज भारत सरकार अभियान चला रही है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा से बिना बैंक गारंटी पैसा मिलता है। मैं चाहूंगा मेरा देश का नौजवान मेरे देश की समस्याओं का समाधान के लिए नए इनोवेशन के नई प्रोडक्ट लेकर के आए और लोगों के पास जाए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, मेरे देश के नौजवानों के बुद्धि और सामर्थ्य का इंतजार कर रहा है। और विवेकानंद जी ने नॉलेज और स्किल को जो अलग किया, आज समय की मांग है, उसी भाव से हम स्किल का महत्व बढ़ाते चले, रातों रात नहीं होता है, बढ़ाते चले, आप देखिए परिणाम कुछ और होगा। इनोवेशन, हमने हमारे नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन एम चला रहे हैं, उसके साथ अटल टिंकरिंग लैब, उसके देश के छोटे छोटे बालक जो इस प्रकार की इनोवेशन करते हैं उनको प्रोत्साहन देने का एक पूरा मूवमेंट चल रहा है। साइलेंट मूवमेंट है लेकिन चल रहा है, और बहुत प्रतिभावान बच्चे नई नई चीजें लेकर के आते हैं। मैं राष्ट्रपति भवन में जब प्रणवदा राष्ट्रपति थे तो देश भर से इस प्रकार से बच्चों को एक बार उन्होंने बुलाया था, 12-15 बच्चे आए थे, वो अपने अपनी इनोवेशन की चीजें लेकर आए थे। तो प्रणवदा ने मुझे आग्रह किया कि जरा इन बच्चों को मिलो, तो मैं देखने गया, मैं हैरान था, वो 12-15 बच्चे थे, उसमें से आधे से ज्यादा वो चीजों को इनोवेट करके लाए थे और 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे थे। कूड़े कचड़े का वेस्ट को वेल्थ में कैसे क्रिएट करना, उसके प्रोजेक्ट लेके आए थे। देखिए स्वच्छता अभियान का प्रभाव कैसा था, वो उन चीजों को लेकर के आए थे, कूड़े कचरे में से क्या बन सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भारत में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है जी, और उस पर हमने सोच रहा जी। आज पूरा विश्व विदेश नीति पर ढेर सारी चर्चाएं होती है, ये खेमा वो खेमा, ये ग्रुप वो ग्रुप, कोल्ड वॉर डिकना फलाना, बड़े बढ़िया बढ़िया शब्द सुने हमने। कभी विवेकानंद जी को किसी ने पढ़ा है क्या, उनकी विदेश नीति क्या थी? स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय कहा था, और आज 120 साल के बाद दुनिया के सामने नजर आ रहा है, उन्होंने कहा था वन एशिया। वन एशिया का कंसेप्ट दिया था, और वन एशिया के कंसेप्ट के द्वारा उन्होंने कहा था विश्व जब संकटों से भिड़ा होगा तब उसको रास्ता दिखाने की ताकत अगर किसी में होगी तो वन एशिया में होगी। एक सांस्कृतिक विरासत का धनी है वन एशिया। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी एशिया की सदी, कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है भारत की, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं है कि सारी दुनिया कहती है 21वीं सदी एशिया की सदी। 125 साल पहले जिस महापुरुष ने यह दर्शन किया था, वन एशिया की कल्पना की थी, और विश्व के इस पूरे चित्र के अंदर वन एशिया क्या रोल प्ले कर सकता है, समस्याओं का समाधान करने की मूलभूत ताकत इस वन एशिया में क्या पड़ी हुई है, इसकी हजारों वर्ष की विरासत इसके पास क्या है, यह दर्शन विवेकानंद जी के पास था। और इसलिए आधुनिक संदर्भ में हमें विवेकानंद जी को देखना चाहिए। वे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते थे, उनकी हर बातचीत में भारत सामर्थ्यवान सशक्त बने उसके आधार क्या, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात करते थे, तो दूसरी तरफ इनोवेशन की बात करते थे, तो तीसरी तरफ वे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते थे, और समाज के अंदर जो दोष हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी बात करते थे। छुआछूत के खिलाफ वो इतना बोलते थे, पागलपन कहते थे, छुआछूत ऊंच नीच के भाव को वो पागलपन कहते थे। जिस महापुरुष ने इतना सारा दिया, आज दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब वो भी अंत्योदय की बात करते थे। महात्मा गांधी भी कहते थे कोई भी निर्णय करिए तो समाज के जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है उसका भला होगा कि नहीं इतना देख लीजिए, आपका निर्णय सही होगा। पिछले दिनों कुछ नौजवानों ने एक कार्यक्रम किया, और वो कार्यक्रम था जो अटल जी के समय गोल्डन चतुष्क बना था, उस पर ट्रैवलिंग करने का, साइकिल लेकर के गए और रिले रेस किया उन्होंने, शायद 6000 किलोमीटर साइकिल पर रिले रेस करते 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 वो जाकर के आए। उनका बड़ा अच्छा मंत्र था, उन्होंने कहा था कि फॉलो द रूल एंड इंडिया विल रूल। हम 125 करोड़ देशवासी इतना कर ले, फॉलो द रूल, फिर विवेकानंद जी का जो सपना था मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, अपने आप इंडिया विल रूल अगर वी मस्ट फॉलो द रूल। और इसलिए इन भावों को लेकर के हम आज जब विवेकानंद जी की शताब्दी 125 साल उनके भाषण के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी और सौभाग्य से विनोबा जी का भी आज जन्मदिन, और दूसरी तरफ वो भना भयानक 9/11 जिसने संहार किया, विनाश किया, दुनिया को आतंकवाद में झोंक दिया, मानव मानव का दुश्मन बन गया, ऐसे समय व वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर के चले हुए हम लोग, प्रकृति में भी परमात्मा देखने वाले हम लोग, पौधे में भी परमेश्वर देखने वाले हम लोग, नदी को भी मां मानने वाले लोग, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाले लोग, संकटों से घिरे हुए मानव जात को, संकटों से घिरे हुए विश्व को, हम तब कुछ दे पाएंगे जब अपनी बातों पर हम गर्व करें और समयानुकूल परिवर्तन करें। जो काल बाह्य है उसको छोड़ना होगा, जो गलत है, जो समाज के लिए विनाशक है, कितनी ही मान्यता है वो अपने जमाने में सही होगी, अगर आज के जमाने में वो नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसको नष्ट करने के लिए निकलना चाहिए। लेकिन मेरे नौजवानों, 2022 स्वामी विवेकानंद जी ने जिस रामकृष्ण मिशन को शुरू किया था उसको 125 साल हो गए। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो गए। हम कोई संकल्प ले सकते हैं क्या? और संकल्प मेरा जीवन व्रत बनना चाहिए, मैं ये करूंगा। और आप देखिए जिंदगी जीने का आनंद अलग होगा। कभी कभी हमारे देश में विवाद होता है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले लड़के होते हैं या कई यूनिवर्सिटी के सारे अध्यक्ष वगैरह बैठे हुए चुनाव जीत करके आए छात्र नेता है सारे, छात्र राजनीति कहां से शुरू और कहां पहुंची वो चिंतन का विषय है। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं जो छात्र राजनीति करने वाले लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे सब कहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है कि किसी चुनाव में उम्मीदवारों ने ये कहा हो कि हम कैंपस साफ रखेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चुनाव होने के दूसरे दिन जाइए, क्या पड़ा होता है वहां, क्या होता है? फिर वंदे मातरम। क्या 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनानी है, 2022 आजादी के 75 साल मनाने हैं तो गांधी के सपनों का हिंदुस्तान, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सपनों का हिंदुस्तान, सुभाष बाबू के सपनों का हिंदुस्तान, विवेकानंद के सपनों का हिंदुस्तान क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है क्या? और इसलिए वो मैनेजमेंट वालों को पढ़ाते हैं ना, एवरीबडी समबडी नोबडी है, ये जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी उन्होंने पढ़ा होगा, और अल्टीमेटली कुछ नहीं। और इसलिए आवश्यक है ये मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप देखिए हिंदुस्तान को बदलते देर नहीं लगेगी। अगर 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक कदम चले, हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे जाए। मैंने देखा है कि कॉलेजेज में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं थोड़े, कॉलेज में डे मनाते हैं, है अलग अलग डे मनाते हैं, आज रोज डे है, कुछ लोगों के विचार इसके विरोधी हैं, इसमें यहां भी बैठे होंगे, मैं इसका विरोधी नहीं। देखिए हमने रोबोट तैयार नहीं करने हैं,
हमें क्रिएटिविटी चाहिए,
हमारे भीतर का इंसान, हमारी संवेदनाएं उस प्रकट होने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस से बड़ा कोई जगह नहीं होता है दोस्तों। लेकिन क्या कभी हमें विचार आता है कि हरियाणा की कॉलेज हो और तय करे कि आज तमिल डे मनाएंगे, पंजाब की कॉलेज हो और तय करे कि आज केरल डे मनाएंगे, दो गीत उसके गाएंगे, दो गीत उसके सुनेंगे, उनके जैसा पहनाव पहन करके उस दिन कॉलेज आएंगे, हाथ से चावल खाने की आदत डालेंगे, कॉलेज में कोई मलयालम फिल्म देखेंगे, कोई तमिल फिल्म देखेंगे, वहां से कुछ नौजवानों को बुलाएंगे, भाई तुम्हारे तमिल के अंदर गांव में कैसे खेल खेले जाते हैं, आओ खेलते हैं। मुझे बताइए डे मनेगा कि नहीं मनेगा, वो डे प्रोडक्टिव होगा कि नहीं होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा कि नहीं बनेगा। हमें विविधता, आप लोग तो बहुत नारा भी बोलते हैं विविधता में एकता को लेकर के, लेकिन क्या इस विविधता का गौरव जीने का प्रयास हम करते हैं क्या? जब तक हम हिंदुस्तान में हमारे हर राज्य के प्रति गौरव का भाव पैदा नहीं करेंगे, हर भाषा के प्रति गौरव का पैदा भाव नहीं करेंगे। मुझे याद है अभी मुझे तमिल यूनिवर्सिटी के तमिलनाडु के नौजवान ऊपर आए, मैंने वणक्कम कहा, एकदम से खुश हो गए वो, एकदम छू गया उनको। ये अपने हैं क्या? हमारा मन नहीं करता है कि हम ऐसा माहौल बनाएं हमारी यूनिवर्सिटी में, ऐसे भी तो डे मनाएं। क्या कभी नहीं लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिख गुरुओं का डे मना करके पंजाब के सिख गुरुओं ने क्या त्याग तपस्या बलिदान किए थे, देखे तो सही, या सिर्फ भांगड़े से अटक जाएंगे क्या? परोठा और भांगड़ा यानी पंजाब आ गया क्या? उससे भी बहुत आगे। और इसलिए हम कुछ करें तो उसमें देखिए क्रिएटिविटी के बिना जिंदगी नहीं है दोस्तों। हम रोबोट नहीं बन सकते, हमारे भीतर का इंसान हर पल उजागर होते रहना चाहिए, लेकिन वो करें जिससे देश की ताकत बढ़े, देश का सामर्थ्य बढ़े और देश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। जब तक हम इन चीजों को से अछूत रहेंगे, हम धीरे धीरे सिमट जाएंगे। विवेकानंद जी कुपमंडूकता पर बड़ी एक कथा सुनाया करते थे, कुएं के मेढक की बात करते थे वो। हम वैसे नहीं बन सकते, हम तो जय जगत वाले लोग हैं, पूरे विश्व को अपने भीतर समाहित करना है और हम ही एक कोचले में बंद हो जाएंगे तो ये कोई हम लोगों की सोच नहीं हो सकती। उपनिषद से उपग्रह तक की हमारी यात्रा, हमने विश्व के हर विचार को अगर हमारे लिए अनुकूल है, मानवता के लिए अनुकूल है, स्वीकार करने में संकोच नहीं किया है। और हम डरे भी नहीं कि कोई आएगा और हमारा कुचल जाएगा, जी नहीं, जो आएगा उसको हम पचा लेंगे, ये सोच के हम लोग हैं। उसे अपना बना लेंगे, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर के आगे चलेंगे, तभी तो भारत विश्व को कुछ देने का सामर्थ्यवान बनेगा। और इसलिए कोई एक कालखंड होगा जब गुलामी की जिंदगी जीता थे, तब हम प्रोटेक्टिव नेचर के साथ अपना गुजारा किया होगा। आज हमें अपने भीतर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि बाहर की चीजों से हम कोई परेशान हो जाएंगे सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों। और मैं तो आज दुनिया में जहां जाता हूं मैं अनुभव कर रहा हूं यही, हिंदुस्तान के प्रति देखने का विश्व का नजरिया बदल चुका है। ये ताकत राजनीतिक शक्ति से नहीं है, ये जनशक्ति से है। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत का कारण है। लेकिन हमें हमारी बुराइयों को अब हम दरी के नीचे डालते चले जाएंगे तो सिवाय गंद और सड़ने के सिवाय कुछ नहीं होने वाला है। हमने बुराइयों के खिलाफ लड़ना है, हमारे भीतर की बुराइयों के खिलाफ लड़ना है। भारत को आधुनिक बनाने का हम लोगों का सपना होना चाहिए। क्यों ना मेरा देश आधुनिक ना हो, क्यों मेरा देश का नौजवान दुनिया की बराबरी करे, ऐसे सामर्थ्यवान क्यों नहीं होना चाहिए। और इसलिए कभी मैं एक बार किसी एक महापुरुष को मिला था, और समय पहले की बात है, तो उन्होंने मेरा कहीं भाषण वाषण पढ़ा होगा, उसकी चर्चा निकाली उन्हें। तब तो मैं राजनीति में नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की एक कठिनाई क्या है। मैंने कहा क्या? बोले हम लोग, हमारे यहां 5000 साल पहले ऐसा था, 2000 साल पहले ऐसे था, बुद्ध के जमाने में ऐसा था, राम के जमाने में ऐसा था, इसी से बाहर नहीं निकलते। बोले दुनिया आप आज कहां हो उससे आधार पर आपका मूल्यांकन करती है। हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास एक महान विरासत है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसी के गौरवगान में से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। गौरवगान आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए होना चाहिए, गौरवगान पीछे हटकर के रुके रहने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें गौरवगान से आगे बढ़ना है। और युवा ये परिस्थिति का नाम नहीं है दोस्तों, युवा ये मनस्थिति का नाम है। जो बीते हुए कल में खोया रहता है उसे युवा नहीं मान सकते हम, लेकिन जो बीती हुई बातों की जो श्रेष्ठ है उसको लेकर के आने वाले कल के लिए सोचता है, सीखता है, समझता है, वो युवा है। उस युवा भाव को भीतर समेटते हुए हम कैसे आगे बढ़े, उसका संकल्प लेकर के आप चले, इसी एक भावना के साथ आज दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूं, श्रीमान विनोबा जी भावे को नमन करता हूं, और आप सब मेरे देशवासी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं टाइम्स न्यूज़ रेडियो।